ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए सभी अनुरोधों पर कार्रवाई को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत पोल अंतर्राष्ट्रीय जांच को नए युग में ले जाएगा। उन्होंने कहा कि अब जांच एजेंसियां आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरपोल से जुड़ सकेंगी। श्री शाह ने कहा कि इससे आतंकवाद से संबंधित अपराधों और मादक पदार्थों, हथियारों तथा मानव तस्करी से संबंधित मामलों से निपटने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने 35 सीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किए, जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृहमंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। आयोग आज दोपहर संवाददाता सम्मेलन में कार्यक्रम की जानकारी देगा। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 29 प्रत्याशी घोषित किए हैं। दिल्ली में 1,55,00,000 से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 83,00,000 से अधिक पुरुष मतदाता और 71,00,000 से अधिक महिला मतदाता हैं। 261 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कल से 3 दिन तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वार्ता के दौरान दोनों नेता सैन्य प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर वार्ता करेंगे। मालदीव के रक्षा मंत्री कल से भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV से जनता के लिए चिंता का कोई कारण नहीं है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक वर्चुअल बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव ने भारत में श्वसन संबंधी बीमारियों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के साथ साथ HMPV मामलों की स्थिति की समीक्षा की। सचिव ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण की निगरानी को मजबूत करने की सलाह दी है। गुजरात में HMPV का एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। इलाज के लिए राजस्थान के डूंगरपुर से अहमदाबाद आए 2 महीने के बच्चे का HMPV सैंपल पॉजिटिव पाया गया है। बच्चे का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। महाराष्ट्र में भी 2 मामलों की पहचान की गई है। इन एक 7 वर्षीय और दूसरा 13 वर्षीय बच्चे के संक्रमित होने का मामला है। आज सुबह नेपाल तिब्बत सीमा पर आए भूकंप में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और 62 घायल हो गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र नेपाल सीमा के पास तिब्बत के जिंगजांग में था। भूकंप से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए। बिहार के कुछ हिस्सों में तेज झटके महसूस किए गए, जिससे घबराकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। असम सरकार ने दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो के खदान में फंसे खनिकों के बचाव में सहायता के लिए नौसेना के गोताखोरों को तैनात करने का अनुरोध किया है। सेना ने राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के साथ संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि विशाखापत्तनम से नौसेना के गोताखोर जल्द ही खदान पर पहुंच जाएंगे। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में कल तक रात सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।